તારીખ 31/3/1991 શ્રી દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 40, 62 અને 63 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 8
सारे उपदेश की बात परिणाम विषय है, क्योंकि पर्याय उल्टी चल रही है, दुख हो रहा है, इसे उल्टी चल रही है, पर दुख चाहिए नहीं, इसलिए सारा उपदेश सुख के लिए, सारा उपदेश सुख के लिए, और उसमें ये उपदेश है कि उसमें पर्याय में अहमपना करना ही दुख का कारण है, मूल में दुख का कारण उसमें हम पढ़ा करना है, सुख प्राप्त करना है तो उसमें हम पढ़ा सब सुख जय दर्शन अन्य मत वालों को समझ में नहीं आता, वहां तो सिर्फ उपदेश प्रधान में बात है, और जितनी उपदेश प्रधान अच्छी अच्छी बात आई वो उन्होंने दिव्य ध्वनि में से अपनी बनाकर अपना संप्रदाय अलग बना लिया है, ऐसे बात तो हम भी चाहते हैं, हमारे में भी है, हम भी कहते हैं, लेकिन वहां अस्तित्व ही नहीं रखना है, समझ में ही नहीं आई, सही रूप से समझ में नहीं आई, उपाधि का विषय पदार्थ का अंग है, वो जिनागम के सेवा कहीं है ही नहीं, तो जिनागम तो बहुत आगे से अलग पड़ जाता है दूसरे से, उत्पाद भी परिणाम का उत्पाद भी एक समय में जिनागम के सेवा कहीं नहीं है, तो यहाँ से तो जिनागम अलग हो गया, फिर तो यहाँ से अलग होना के उत्पाद भी समय नहीं, यही बात और जब उत्पाद में नहीं, मैं उत्पाद में से भिन्न उत्पाद में को सिर्फ देख रहा, मस्ती कितनी होगी इसमें, दुख होता है उत्पाद में, दुख से छूटना है उत्पाद में से छूटना, कहां से क्यों लगा दी, दुख नहीं होने के लिए क्यों मैं कहां से रखा इस विषय को कि जिससे दुख ही नहीं हुआ, देर से भिन्न होने की बात होती है, सता वेदना किसी को नहीं चाहिए, तो फिर देह के प्रति राग द्वेष से उससे ही भिन्न हो जाओ ना, वहां से क्यों में रखो उसको, तो यहाँ तो कहते हैं कि ये उत्पाद ही से ही भिन्न रहना है, तो वहां से लगा लो राग के सब झंझटें साफ,
सुंदर ने आपने विषय दिया था ना, उस रोज एक थोड़ा लोगों में ऐसा हो गया था ध्यान वाले बाद में कि क्यों मैं लगा होने दे, शरीर से भिन्नता की बात है, इससे भिन्नता की बात है, कर्म से भिन्नता की बात है, क्या अनुभव कर्म से
रोग क्या रोग के रूट में जाता है वो सही माना जाता है, अलग अलग पथि है, इसमें भी जो भी पथि शारीरिक विज्ञान तबीयती विज्ञान में जो रोग के रूट कॉज में जाता है उसको ठीक माना जाता है। वो इतना गहरा होकर उसने इस बात को देखी है तो फिर कहाँ से ये गड़बड़ी चली है कि पर्याय मुंडा पर समय ने सूत्र दिया तो वहां से वो बात उसका जो रूट कॉज है वो तो इन्यास है, जो पर्याय दृष्टि है तो सभी प्रकार की आपत्ति है और पर्याय दृष्टि नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपत्ति विपत्ति इसी सब पर्याय का मामला है, यहाँ से तो छूट गया। बहुत गहरी चीज पर्याय दृष्टि में ही से ही विभाव के विपत्ति है, बिना पर्याय दृष्टि से वो ही नहीं सत्य। पर द्रव दृष्टि से ही स्वभाव की उत्पत्ति होती है, बिना द्रव दृष्टि स्वभाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दोनों का मूल इधर है, स्वभाव विभाव उत्पन्न होती है। कर योग और वाणी मिली तो ठीक है, खुशी होगी, भविष्य में भी यही भाव से मिलेगी तो स्वभाव आता है, अच्छा लगता है, जैसे उसमें होश में उत्साह रस आता है तो उससे कैसे छूटेगा, लाभ मान्य है तो कैसे छूटेगा। इससे मैंने ऐसे भाव से नुकसान ही नुकसान ही है, नुकसान ही है, लाभ नहीं, लाभ तो मेरे से ही है, वर्तमान से ही मेरे से लाभ है, ऐसा दूर नहीं तो वो तो परिवर्तक जाएगा, तो भी तथ्यों पर योग नहीं मिली है उसमें तक जाएगा। उसमें क्या हुआ कि बेरूप परिणाम का रस आया, कोई भी सुवियोग मिला है तो बेरूप परिणाम में रस आता है, वो परिणाम तो अंतर्मुख होने के कारण वो परमार्थिक मुखान तो ऐसा यहाँ और जिस मूल्यों को भी अंतर्मुख परिणाम बहुत अच्छी तरह है अंतर्मुख परिणाम तो बहुत है, छठे गुण स्थान में भी धारा बहुत तगड़ी है, सप्तम गुण स्थान में तो अंतर्मुख में ये भी तगड़ा है, फिर भी सारा जीवन आयुष के अंत तक ये चालू रहा साथ साथ में शुभ परिणाम जो कहां से उसमें रस जो है वो एक बिना एकत्व बुद्धि भी रस पर पड़ता है, भाग जो है वहां पड़ते शुभ का अनुभाग बढ़ता है तो ये अनुभाग अघाती के स्थिति को बढ़ाता है, क्या ये प्रकृति सुंदर रूप में जाते हैं जहां बहुत लंबे होते हैं सर्वार्थ सिद्धि तक हो गए, सुख का रस नहीं होता तो ये बात नहीं थी, रस है वो स्थिति अनुभाग है वो स्थिति को बढ़ाते अघाती को, घाती में अघाती को स्थिति को अघाती की स्थिति को बढ़ाते हैं, आयु कर्मी इतना लंबा हो जाएगा दुनिया का, उनकी दशा में कोई सर्वा सिद्धि में जा ही नहीं सकते, नीचे वाला तो कोई जा ही नहीं सकता, ऐसा क्यों हुआ कि अपने दीक्षा तो ग्रहण की थी केवल ज्ञान के लिए, दीक्षा के लिए दीक्षा नहीं की थी, छठे सातवें गुण स्थान के लिए दीक्षा नहीं ली जाती, दीक्षा को पूर्ण होने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए ली। तो हमारी आवरणीय प्रणाल ने आयुष पूरा कर दिया, तो चारित्र उनको उपदेश ऐसे देते हैं धीरे धीरे भगवान, आयुष पूरा करने के पहले केवल ज्ञान ले लिया, फिर बड़ा जंक्शन जाएगा, इसलिए केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं उड़ता है, फिर सुख का रस ही बाधक होता है, और वो रस स्थिति पड़ती है तृतीय सागर। एक तो तुड़ गया चौथे गुण स्थान, अब तो होने पड़ा है, फिर ये हालत है।
तो मिथ्या दृष्टि को जो सुख के रुचि के साथ में रस आता है, तो वहाँ रुचि नहीं है फिर भी रस की मात्रा बढ़ने का क्या कारण, या कोई रस को जुड़ ही जाता है, ये
है तो अलग जात का, फिर भी जात तो बिल्कुल अलग है, एकत्व नहीं है इसके, जात तो बिल्कुल अलग है, क्वालिटी ऐसी कोई है कि जिससे सर्वार से होता
है, रुचि विहीन रस ऐसी कोई क्वालिटी नहीं पैदा होती
है, ऐसे है रुचि विहीन रस है, फिर भी उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो जाता है सर्वार से।
पुरुषार्थ की मंदता का ये दूसरा पहलू है, पति के पक्ष है
उनकी तो प्रवृत्ति इससे ज्यादा तो कोई नहीं है, प्रवृत्ति तो है शास्त्र अध्ययन की है, तत्व चिंतन की है, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी के स्वभाव है, इससे आगे का कोई स्वभाव नहीं होता, जो क्वालिटी है स्वभाव की तो हाईएस्ट क्वालिटी की अच्छी है, लेकिन वो स्वभाव के दरजे में क्वालिटी हाईएस्ट है, शुद्धता में तो कोई विरुद्धता पड़ती है, उसके लोकोत्तर चीज कैसी है, मिथ्या दृष्टियों को तो उस क्वालिटी ही नहीं होती, विभाव के इस क्वालिटी मिथ्या दृष्टियों को तो होती है, संगीन दृष्टि में जो भी उसमें भी हाईएस्ट क्वालिटी का है, फिर भी जो विरुद्ध है वो अविरुद्ध नहीं होते कभी, विरुद्ध का फल विरुद्ध ही है, विरुद्ध नहीं है।
जिनके विभाव से सामने वाले जीव का संसार छेद हो जाता है, तो वो विभाव कैसा है?
विभाव से नहीं, विभाव निमित्तक पुद्गल से, पुद्गल निमित्त पड़ता है,
वाणी
वाणी तो पुद्गलात्मक है, विभाव निमित्तक जो पुद्गल की रचना होती है, मतलब उसमें कितना पावर है, सूर्य उगता नहीं है उसके पहले प्रकाश आ जाता है, तो ठीक है सूर्य उगे तब तो प्रकाश हो, उसमें क्या कहना है, लेकिन बिना सूर्योदय भी प्रकाश आता है, यही तेज पुंज का द्योतक है, कितना तेज का पुंज है वो, तो जिसकी शुद्धता बेहद कहीं, वो उसका मतलब क्या, कि जिसकी शुद्धता नहीं, जिस शुद्धता के साथ जो अशुद्धता रही उसके निमित्त से जो पुद्गल हुई, पुद्गल बने, उस निमित्त से दूसरों की शुद्धि उसमें निमित्त हो जाती है, फिर शुद्धता कितनी, फिर शुद्धता कितनी,
अजब
गजब बातें हैं।
इधर आप कहते हो कि सुख की रुचि होना मिथ्यात्व है, इधर आप कहते हो कि सुख का रस बड़े मिथ्या रस गया, मतलब सुख की रुचि हो जाना मिथ्यात्व है। इधर आप कहते हो कि सुख एक समय का सुख प्रकट हुआ उसका अगर उसको ऐसा अवलंबन आ जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, उसमें छुट जाता है। और एक तरफ प्रश्न अगर कर ये सुख इतना बढ़ता है कि वो सर्वार्थ सिद्धि चला जाता है।
अशुद्धि नहीं है, विशुद्धि बहुत है, भाव है स्वभाव नहीं।
तो चारित्र गुण में जाए, विशुद्धि तो चारित्र गुण में जाए, और इस चारित्र गुण के अंदर वैसे विशुद्धि के हिसाब से देखे तो हिंता आई, वैसे अगर उस चारित्र गुण की विशुद्धि को उस शुद्धता के हिसाब से अगर विचार करें तो उसमें तो दो गुण स्थान नीचे हो गए,
उसका छेद उठ जाना चाहिए, उड़ा करके केवल ज्ञान में चले जाए लंबाई के,
इसलिए वो चौथे में आ गया, छठे सातवें से चौथे में आए।
एक गुण स्थान में आयु पर्यंत लंबा ना उचित
ये स्थिति बनके इसमें क्या प्रारब्ध का एक फल नहीं, उनका अपना दोष है या प्रारब्ध का फल है? जैसे
प्रारब्ध बिना दोष कैसे बनता
है? तो पूर्व के दोष वर्तमान में क्या है, जैसे एकत्व टूटा है वर्तमान में उनकी क्या क्षति,
वर्तमान में पुरुषार्थ होता तो क्या क्या होता, केवल ज्ञान नहीं ले लेते, पुरुषार्थ पढ़ता तो केवल ज्ञान नहीं ले लेते।
तो आयु के निश्चय को थोड़ी खत्म कर देते, आयु जो मान के आए हैं उसको निश्चय को थोड़ी खत्म कर सकते थे, अगर पुरुषार्थ बढ़े भी तो आयु कर्म का थोड़ी नाश कर सकते हैं।
बात आयु की नहीं है, पूर्व ने की केवल ज्ञान की बात,
आयु रहे
आयु से क्या,
हाँ बराबर आप समझ
तो अरविंद को भी रहते
आप समझ रहे उसके हिसाब से पुरुषार्थ धर्म मन रह गया।
इसलिए चतुर्भुज स्थान वाले उपयोग बाहर निकला के जन्म का दोष समझो, बस उसको दूसरा कुछ नहीं समझ। कल्याण नहीं चाहिए हमारा, एक ही अभिप्राय है। उत्सर्ग तो ऐसा ही होता है, अपवाद को कुछ भी हो उत्सर्ग तो सिद्धांत को सिद्धांत है।
श्रीमती के जितने बताते हैं उसमें अपना जो भी उन्हें एक साथ जुड़ा है सब कर्म के ऊपर डालने का, वहाँ कहना है एकत्व टूटा है ये दर्शाने की मुख्यता, कर्तव्य नहीं है
ऐसा है। उसी वक्त उस उदय में उदय को दिखाते हैं, उदय को दिखाते हैं तो देखने वाले का तो उदय दिखता है दूसरों को, ठीक। अपन जो उदय वो खुद उदय कहते हैं कि ये प्रारब्ध उदय है, मतलब वहाँ श्रद्धा से तो निषेध है ही, लेकिन जो अचारित्र है उस अचारित्र को मूल अचारित्र का मूल को वहाँ वो काटते हैं, वो खुद उदय कहते हैं कि ये प्रारब्ध उदय है, मतलब वहाँ श्रद्धा से तो निषेध है ही, लेकिन जो अचारित्र है उस अचारित्र को मूल अचारित्र का मूल को वहाँ वो काटते हैं, तब उसको कहने का अधिकार है कि ये पावन तो नहीं है। मूल काटा मैंने क्या, ये थोड़ा मैथमेटिक्स से अलग टाइप का सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स में एक के पीछे दो, दो के पीछे तीन, तीन से आगे चार, चार से आगे पांच, ऐसा है। इसमें थोड़ा दूसरी बात बताती है, दूसरी मैंने क्या बोली कि गुणस्थान में तो आगे नहीं बढ़ते, चतुर्थ में से छठे सातवें में नहीं आते, लेकिन होता है क्या कि चतुर्थ में से चतुर्थ में रहेंगे अगले गुण दिन को, और फिर भी चतुर्थ गुण स्थान लेके मनुष्य होंगे, और फिर जो है वही चरम शरीर उनका हो जाएगा। तो उतना निकट ले लिया कि उसको जो बाह्य चारित्र में है बहुत कम समय लगने वाला, जैसे भरत चक्रवर्ती मुनिराज की तरह उनके इतने स्वभाव नहीं थे। और भाव का रस भी इसलिए इतना नहीं उठे थे साथ में, शुभ का रस को मारता है और अशुभ में तो उनको रस आता नहीं, लेकिन शुभ का रस को तो अवश्य मारता है, ये क्या नहीं थे इसमें तो बच जाता है ठीक पड़ने में आघाती रस में तो बच जाता है। तो उसने तो दीक्षा लिया ना कि श्रेणी में आगे अब छठे गुण स्थान के चारित्र प्रभाव में क्यों नहीं आया, दीक्षा लिया सप्तम में आया, सप्तम में आते ही वो आठ अष्टम नवम दसवें बारह में चले गए, छठे में क्यों नहीं है? जो दूसरे मुनि आते हैं पंचमार शास्त्र पढ़ना शास्त्र लिखना इसमें क्यों नहीं आए, वो जो छठे गुण स्थान वाले थे इसका मुंह तो काट लिया चतुर्थ गुण स्थान, तो फिर वो भूल काटा तो वहां से कोई अंकुर ही नहीं निकला। ऐसा चतुर्थ स्थान में कभी कभी ऐसा काम होता है, जो भरत चक्र होते भी या ऐसे जो एकालकारी होते हैं वो ऐसे करते हैं, ऐसा उनका होता है करते हैं, मतलब ऐसा होता है इनकी साधना का टाइप जो है थोड़ा अलग है। ऐसे गणित ऐसा विचित्र है ये, उनको ज्यादा भगवान भाव भी ज्यादा नहीं होते और भाव में भी चरित्र दशा बहुत कम रहती है, मुनि दशा तीव्र श्रेणी में आ जाते चारित्र बढ़ने में, अचारित्र के मूल तो काटे हैं, चतुर्थ स्थान में कभी गुरु बहुत काटता है। बाहर का योग इतना तो खराब दिखता है, ये अंधा बार दृष्टि अच्छा नहीं दिखता है, इतना महत्वा है बड़ा, तो ये क्या तो ये प्रारब्ध है उनका नहीं है कुछ, जब उसको प्रारब्ध कहा जाता है प्रारब्ध कहने का तो सब तो है
माता जी के बारे में ऐसा कुछ कहा था।
तो हाँ पिछले दिन तो काफी वो चलता था चर्चा निकली थी मित्र में को बता दिया था, तो स्वास्थ्य भी इतना नहीं है, स्त्री पर्याय है स्वास्थ्य भी इतना नहीं है, तो क्या करें अब तो चारित्र के मूल काटते हैं, अचारित्र के मूल काटते हैं, क्षमता है ज्ञान है अचारित्र है तो अचारित्र का तो वो तो आगे तो नहीं जा सकते चारित्र दशा चारित्र में रह रहे क्या करें, इस मूल को काटा अचारित्र के मूल को काटा, ये बात तो ऐसे गहनता उसको ऊपर से समझ में नहीं आ
उन्होंने ऐसी बात की, इसके बावजूद भी उनके तो गुरुदेव जितने के जितने चार भाव
है वो तो है, फिर भी किस भाव में क्या कैसे होगा वो तो अपने को पता नहीं है, भाव होते हैं फिर भी चारित्र दशा में किसको कितना काल निकालना पड़ता है दूसरी दूसरी बात रहते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी को सबसे कम 6 दिन की उम्री दशा में 6 दिन की थी, भगवान ऋषभ देव को 1000 वर्ष की उम्री दशा
भले ही जिनकी बुरी दशा का काल अधिक हो, उन्होंने उस जीव में भी चतुर्थ गुण स्थान में चरित्र दशा को काटने के मूल काटने के प्रयास को किए हैं।
प्रयास तो क्या उन्होंने थोड़ी ज्यादा बाह्य प्रवृत्ति में उनको ज्यादा अंतर प्रवृत्ति में बाह्य प्रवृत्ति में शुभ का रस बढ़ता है वो चरित्र को उतना नहीं गुण में से काटने का रहता है। गुरुदेव ने वंदन किया के वंदन करेंगे तो कोई मामूली कोई फालतू बात इतने ज्ञानता को कोई समझे नहीं तो क्या बात कितनी अपना वो समझने में समझाने में रस जाता को पसंद तो नहीं आता यानी को बात पसंद तो नहीं आता है सुनने जाते हैं नुकसान का धंधा तो प्रेफर कौन करेंगे नुकसान तो नुकसान ही है कोई मुनाफा थोड़ा है एक को चार भोग वो बात ज्यादा हर वक्त क्या रहेगा वो दूसरी बात है अब क्या है आगे क्या होगा इसके पहले क्या हुआ होगा परिणाम तो कोई निष्फल नहीं सभी परिणाम ये सफलता संसार की हो चाहे मोक्ष की हो काटने में कितना काटा किसने कितना काटा कौन बता सकता है कौन बता सकता
है इसमें महावीर स्वामी का 10 भोग का आता है
कल्पना करने की चीज नहीं अंतर मालूम पड़ता है क्या स्पीड है गुरुदेव ने तो प्रत्यक्ष तौर से नहीं देखा, लेकिन अनुभव तो है ना इस लाइन का, तो कैसे पता चल गया तेजी क्या चीज है? झपट कहते हैं वो, पचावट कहते हैं, तेजी क्या चीज है वो तो पता चल गया कि नहीं चल गया? जो जिसको शासन चलाना हो कर सकते उसको सब स्पष्टीकरण करना पड़ता है, हमें कहाँ शासन चलाना है, तो क्या एक पंक्ति है क्या शासन चलाने वाले के प्रति? गुरुदेव ने बहुत स्वीकार लिया है, गुरुदेव के साथ चर्चा हुई इस बात पर, खुद की बात पर खुद ने चर्चा निकली, मैंने नहीं निकाली, मेट जिसको पास है तो समय के उठाएंगे, दूसरे को तो दुख लग जाएगा, ये तो हमारे पर ऐसा क्या हमको कहता है, ऐसा उनको ही लगे बहुत अच्छा कहते हैं, पात्रता वाला तो सीधा देता है, तो समय दृष्टि तो और सीधा देता है, तो पात्र पैसा आगे बुरे हुए, पात्रता वाला भी बुरा नहीं देता, तो अपने ये बात कह देता है तो सीधा ही अच्छा
आत्मानुभव होने के बाद ज्ञानी जीव न्याय नीति से धनादि की प्रवृत्ति करते हैं, उत्तर करना ध्यान नहीं रहा, मैंने न्याय नीति का विषय तो पात्रता में चलता है, वो तो ज्ञानी हुए हैं, तो किसी ज्ञानी की प्रवृत्ति में न्याय नीति नहीं देखी सकते, दूसरा क्या है कि मिथ्यात् अवस्था में तो कर्तृत्व बुद्धि से अन्याय और अनीति होती है, पर यहाँ तो कर्तृत्व ही छूट गया, अब जो अशुभ रहा उसमें अन्याय और अनीति हुई हो तो अशुभ हुआ, तो उसका अशुभ का मूल्य कितना, दूसरे का कितना, ये चीज तो बहुत गहन है, इसलिए कि शुभ का रस कटता है दो तरह से, एक शुद्धता से एक अशुद्ध से, शुद्धता नहीं है और अशुद्ध से कटता है, शुद्धता में तेजी रहती है, अनुसार अनुसार तो जो लिमिट है सो लिमिट है ही, उसमें अन्याय बना लेती है वो भी सी है, लेकिन सामान्य मनुष्य तो होती नहीं उनको, इसलिए ऐसी बातों को उपदेशात्मक शास्त्रों में नहीं देते हैं, अध्यात्म शास्त्र में तो ये बात नहीं देते, अध्यात्म शास्त्र में तो उसका पहलू दूसरा है, जो उसको अध्यात्म का दृष्टिकोण नहीं हो गया उसको ये बात समझ में नहीं आई। रामचंद्र जी चरम शरीर थे, सीता जी के प्रति अन्याय भी किया जाएंगे सुझाएंगे, ऐसा अन्याय हुआ इसलिए कोई ऐसा कर्म बंद हुआ दूसरा आयु का बंद नहीं होने वाला तो जुगाड़ खेले जो सप्त व्यसन में से एक है व्यसन के रूप में तो नहीं व्यसन के रूप में नहीं था उपदेशात्मक शास्त्र में ऐसी बात नहीं चल रही फिर भी पुराण में जो बात आई वो तो अध्यात्म के दृष्टिकोण अध्यात्म का दृष्टिकोण प्रकट करते हैं तो दिखाई नहीं बात तो ये सब चली है पुराणों में जीवन चरित्र पुराणों की बात में इतना ठोस अध्यात्म का दृष्टिकोण इसके पीछे हो वो वार्ता कथा सुनने वालों को कैसा पता चला है जिसको कथा के माध्यम से तत्व दिखाना तो इतना गहरी नजर स्थूल बुद्धि वाले पढ़ गए हिस्ट्री तो जब प्रसिद्ध रूप में होती है सब विचिक्षण हो गए तो उसकी गहराई में जावे तो ये क्या इतना महान पुरुष उसी भाव में जब चरम सवेरे होकर के मोक्ष जाने वाला तो उसको ऐसा होगा भीतर में क्या चीज है कुछ कुछ सीक्रेट है इसमें कुछ कुछ न कुछ रहस्य पड़ा है प्रशिक्षण होने तो वो तो ध्यान जा रहा है कुछ रहस्य है इसके कुछ ये कौन सा है कैसा है उसका तो रस नहीं है उसमें तो हम ज्ञान कर लेते योग्यता है चलो उसके भी निर्जरा हो गई ऐसी कोई मलिनता की योग्यता शक्ति रूप थी व्यक्त निर्जरित हो गई उसको कोई नुकसान करके नहीं गई जैसे कोई ऐसे बहुत कमजोर आदमी होता है बड़ा दुबला पतला और फिर बड़ी बीमारी में फंस जाता है और फिर उसका स्वास्थ्य सारी जिंदगी भर इतना अच्छा रहता है कि ये बीमारी इनके लिए नुकसान है या फायदा करता है कि ये गड़बड़ी मिटाने के लिए मारने के लिए सब बीमारी बीमारी भीतर में तो पता नहीं चलता बाहर निकलते तो सबको पता चलता है कि ये बीमार हो गया बीमार हो गया बीमार हो गया बहुत खराब हुआ बहुत खराब हुआ नुकसान उदय ऐसा आया पाप का उदय पाप का उदय पाप का उदय नहीं है उनको ये तो निकाल दिए यहाँ से देखे
ज्ञानी के जैसे खेद भी नहीं होता ज्ञानी ज्ञानी को जैसे ऐसे खेद भी नहीं होता इस तरह के उदय में ज्ञानी जैसे खेत करता है
निवृत्ति काल में निर्जरा हम नहीं कर पाते निर्जरा प्रवृत्ति काल में कर रहे हैं परंतु उधर इसका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो इधर का है। अंतर में एकत्व हुआ तो स्वतः परिणाम मर्यादित हो ही जाते हैं, लेकिन मर्यादित ही है, होता ही है, होता है, इतना भी वजन नहीं है ना। वो तो वजन वाले को ऐसा अच्छा मर्यादित हो जाता है, ये सब परिणाम वालों को। परिणाम पर वजन रखने वाला किस तरह से नाप करते हैं वो उनको उसका निषेध करते हैं, लेकिन मर्यादित होता है, होता है ऐसा कहने से उसकी कहलने कहने वाले की दृष्टि में परिणाम को मर्यादा में रखने का प्रयत्न करता है, अर्थात परिणाम को ही एकत्व बुद्धिपूर्वक देखते रहता है, और परिणाम की मर्यादा को देखते रहने से अपरिणाम का दोष। इसलिए कहते कि जो परिणाम होने वाला है वो हो जाता है, तो जो परिणाम होने वाला है वो जाता है, इससे आगे वो कहना नहीं चाहते थे। फिर भी वो समझ नहीं समझे इसलिए कि तो वो मर्यादित परिणाम रस की परिणाम पर जिसका एकत्र मर्यादित हो जाता है, मर्यादित तो हो जाता है, ये तुम्हारे लिए बात नहीं है।
परिणाम की मर्यादा को देखते रहने से परिणाम की गिर ही जाता है।
मेरी बात कहते कहते परिणाम पर जिसकी दृष्टि है उसको क्या नुकसान होगा, ये बात कहना चाहिए। वो एक साइड को कितनी सावधानी से संभालते हैं, परिणाम पर वजन नहीं जाना चाहिए, परिणाम का रस कट जावे, परिणाम में ये हो जावे, परिणाम में वो हो जावे, इस पर वजन नहीं जाना चाहिए। वो प्रयोग वो दृष्टिकोण कितना पावरफुल है, मतलब कितना तेज है, तो ये दृढ़ दृष्टि प्रकाश में से ये बात निकलती है कि विवेक के बहाने, प्रसाद के बहाने, श्रद्धा के बहाने, ज्ञान के बहाने, किसी के भी बहाने परिणाम पर वजन नहीं होना। बहुत सुंदर कोई दृष्टिकोण है तो सारे ग्रहण चाहिए, जो इस प्रकार का एंगल की शैली दूसरे ग्रंथ में होगी उतनी अच्छी रूप से उतना सुंदर ढंग से मिलती नहीं। के विषय पर जोर देते हैं तो सारे परिणाम पर का वजन उठ जाता है। ये इसी बात को एक इसी बात को दिखाने के लिए कितने एंगल से ये बात इधर आई है, ये इस ग्रंथ के संदर्भ में जो मूल चीज है उतनी है। अपना परमात्मा पद पर इतना वजन है, इतना वजन है, इतना दृष्टि का जो है केवल ज्ञान तक, सुमेघ दर्शन से लेकर केवल ज्ञान ज्ञान तक कोई परिणाम पर वजन नहीं, तो वजन नहीं उसके भी कितने एंगल है नहीं होने का। इस विषय जो सारी सुंदरता है कहीं भी रस नहीं आवे ऐसा नहीं, कहीं भी कहीं से भी बुलाओ मारते हैं
मार दिया